नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ। और हाल के महीनों में वन नेशन के बढ़ते प्रभाव ने प्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और बहुसांस्कृतिकता यानी मल्टीकल्चरलिज्म जैसे मुद्दे को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसके पीछे की राजनीतिक खींचतान नई नहीं है, इसकी जड़ें करीब 3 दशक पुरानी हैं। लिबरल नेता एंगस टेलर ने वन नेशन के साथ किसी औपचारिक गठबंधन से इनकार किया है। हालांकि चुनावी प्राथमिकता समझौते की संभावना अभी भी बनी हुई है। वहीं वन नेशन का आरोप है कि कोएलिशन उसकी नीतियों को अपना रहा है। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने लोई इंस्टीट्यूट में दिए एक भाषण में चेतावनी दी कि मोनोकल्चरलिज्म यानी एक रूप संस्कृति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई लोग आज भी लोकतंत्र और बहुसांस्कृतिकता को महत्व देते हैं।
I've always believed that the ability of Australians to connect with people from every part of the world is a national asset. A national asset that expands our choices in the world. The call for a monoculture is a call for Australia to curtail our choices and to cut off our connections. To look inwards, to have no friends to work with, no partners to trade with, and no opportunities to grow from. It is to be lonely in a dangerous world.
उन्होंने अपने भाषण में वन नेशन या पॉलिन हैंसन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को वन नेशन के एक रूप संस्कृति के विचार की अप्रत्यक्ष आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। करीब 2 महीने पहले वन नेशन की नेता पॉलिन हैंसन ने नेशनल प्रेस क्लब में ये कहा था।
We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural.
पॉलिन हैंसन ऑस्ट्रेलिया के प्रवासन कार्यक्रम को घटाकर 1,30,000 प्रति वर्ष करने की मांग कर रही हैं। साथ ही वे उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं जिन्हें वे गैर कानूनी कहती हैं। कोएलिशन भी प्रवासन कम करने की बात कर रही है। शैडो हाउसिंग मिनिस्टर एंड्रयू ब्रैग्स ने नेट माइग्रेशन को 1,80,000 प्रति वर्ष तक लाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि ये आंकड़े कोएलिशन की आधिकारिक नीति नहीं है और पार्टी के कई सहयोगियों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। नेशनल प्रेस क्लब में अपने भाषण के अगले दिन एंड्रयू ब्रैग्स अपने प्रस्ताव पर कायम रहे।
These are the parameters. If you want to close the housing and migration gap, the problem you're trying to solve, to be clear, is if you've got a gap of about 350,000 to 400,000 people that wouldn't be housed because of Labor's migration failure, right?
उन्होंने ये भी कहा कि कम आय वाले ऑस्ट्रेलियंस को अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले आवास को स्वीकार करना पड़ सकता है। हालांकि उनके प्रस्तावों को कोएलिशन के भीतर व्यापक समर्थन नहीं मिला है। नेशनल पार्टी से अलग होकर वन नेशन में शामिल हुए सांसद बानवी जॉयस ने कहा कि कोएलिशन को उनकी पार्टी की नीतियों की ओर बढ़ते देखना उनके लिए संतोषजनक बात है। पॉलिन हैंसन ने भी कोएलिशन पर वन नेशन की नीतियों को अपनाने का आरोप लगाया है। हालांकि उनका कहना है कि बड़ी पार्टियां इन नीतियों की बारीकियों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाएंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा के राजनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर जॉरन मैक्सविनी का कहना है कि मौजूदा स्थिति को समझने के लिए इतिहास को देखना जरूरी है। पॉलिन हैंसन ने राजनीति की शुरुआत लिबरल उम्मीदवार के रूप में की थी, लेकिन 1996 के चुनाव से पहले उन्हें पार्टी से उम्मीदवार पद से हटा दिया गया था। 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन हॉवर्ड ने मतदाताओं से वन नेशन को अंतिम प्राथमिकता देने की अपील की थी।
In a way, it kind of depends who you ask, because in some respects, yes, they were quite firm against one nation. You know, they said they wouldn't do preference deals and things like that. But I think looking back on reflection, what we see actually is a little bit of Howard and the then coalition government kind of doing a lot of what One Nation was talking about and planning about, but by stealth and with a sort of softer language.
हालांकि डॉक्टर मैक्सविनी का कहना है कि हॉवर्ड सरकार ने हमेशा वन नेशन से सीधा टकराव का रास्ता नहीं अपनाया। उनके मुताबिक कोएलिशन के लिए हॉवर्ड सरकार के तरीके से एक सबक मिलता है। वन नेशन को राजनीतिक वैधता दिए बिना उसके द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्य धारा की नीतियों के माध्यम से संबोधित करना। इस बीच पॉलिन हैंसन ने संसद के ऊपरी सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक विधेयक भी पेश किया है.
One Nation's legislation is aimed at putting in place every possible barrier to prevent their return and protect Australians. Yeah. It creates a new foreign terrorist fighter exclusion order for which the minister may apply to the federal court. The bill creates stronger bail laws, making community safety and national security the most important factors. The legislation gives the minister the power to refuse, cancel or suspend passports where an exclusion order is in force or if an individual is charged with or convicted of a terrorism offence.
इस बिल में विदेशों में किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन कर चुके लोगों की ऑस्ट्रेलिया वापसी में मदद करने को भी अपराध बनाने का प्रस्ताव है. लेबर और ग्रीन्स ने इस विधेयक के संवैधानिक होने पर सवाल उठाए हैं, लेकिन कोएलिशन के कुछ सांसदों ने वन नेशन के साथ इस मुद्दे पर काम करने की इच्छा जताई है. इनमें शैडो डिफेंस मिनिस्टर जेम्स पैटरसन भी शामिल हैं.
We've said consistently we're happy to work with anyone who wants to protect Australia from the serious national security threat posed by these returning radicalised people. And we have consistently said we'd support the introduction of bills and the referral of bills to committees. I think that's the appropriate way to test the constitutional issues that have been raised. We're not willing to just take Tony Burke's word for it, given the government has misled the parliament and got it wrong multiple times on the constitutionality of immigration bills in the past.
यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की संवैधानिक कानून की प्रोफेसर एनेट टॉमी का कहना है कि इस विधेयक में ऐसा संवैधानिक सवाल उठता है जिस पर हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया है. ये सवाल है,
And so the question is whether you can make a law that excludes Australians from being able to enter and live in Australia.
हालांकि इस मुद्दे पर अभी औपचारिक फैसला नहीं हुआ है. प्रोफेसर टॉमी का कहना है कि न्यायाधीशों की पिछली टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने और वहां रहने का अधिकार होना चाहिए.
And look, I think it's reasonably likely that a high court would decide, look, if citizenship means anything, it has to mean the right to be able to enter and live in the country of which you're a citizen. Otherwise, it's completely pointless, it's meaningless. But it's also likely that if it did find that it would say, well, you know, no right is absolute, and it would apply some kind of a proportionality test that would probably say, is this law reasonably appropriate and adapted to achieve some kind of other legitimate end?
उनके पास पहले से ही कुछ परिस्थितियों में अस्थायी प्रवेश प्रतिबंध लगाने की शक्तियां हैं, जो 2 साल तक लागू हो सकती हैं. प्रोफेसर टॉमी के मुताबिक, यदि ऐसे मामलों को अदालतों के माध्यम से तय किया जाता है तो प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है. तो वन नेशन का बढ़ता प्रभाव केवल एक छोटी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता की कहानी नहीं है, ये कोएलिशन के सामने भी एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है. अगले चुनाव में ये ऑस्ट्रेलिया की राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है. SBS न्यूज के लिए टी मिशेल की इस खबर को SBS हिंदी में आप तक लेकर आई भव्या पांडे.